नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,015 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो के 5A चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस चरण के अंतर्गत 3 मेट्रो कॉरिडोर आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज को मंजूरी दी गई है। 13 नए मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे।
ये जो 3 आज कॉरिडोर अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 करोड़, एरो सिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 किलोमीटर 1,419 करोड़, तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर 1,024 करोड़। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 टन CO2 एमिशन एवरी ईयर विल बी सेव।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस, अरावली पहाड़ियों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में गलत सूचना फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि लोग विपक्ष के इस दुष्प्रचार के झांसे में नहीं आएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM3M6 के जरिए अगली पीढ़ी के अमरीकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय समयानुसार सुबह 8:55 पर किया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। हरियाणा के पंचकुला में आज क्रिभको द्वारा आयोजित मेगा सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कृषि बजट बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार पशुपालकों के हित में काम कर रही है, क्योंकि कृषि और पशुपालन से अनेक लोगों को रोजगार मिलता है।
हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीवन यापन भी खेती के आधार पर होता है, किसानी के आधार पर होता है, पशुपालन के आधार पर होता है। अगर हम कृषि को और पशुपालन को एक स्वतंत्र रूप में, आइसोलेशन में, व्यवसाय के रूप में देखें, तो वो बहुत सारे लोगों को रोजगारी देते। कृषि और पशुपालन के साथ कोऑपरेटिव को जोड़ते हैं तो ये 125 करोड़ लोगों को रोजगारी के साथ समृद्ध बनाने का काम भी एक कोऑपरेटिव कर सकता है।
खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देश के प्रत्येक उपभोक्ता की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आवाज उठाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री जोशी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने नियमों को लागू करके ई कॉमर्स को शामिल कर उत्पाद दायित्व को लागू कर और ई फाइलिंग तथा वर्चुअल सुनवाई को सक्षम बनाकर उपभोक्ता ढांचे में सुधार किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में सुशासन पद्धतियों पर 5वीं राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। ये आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। लोक शिकायत और पेंशन सचिव रचना शाह ने आज कहा कि पेंशन अदालत जटिल और लंबे समय से लंबित पेंशन मामलों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के मामलों के समाधान के महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी है। नई दिल्ली में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत को संबोधित करते हुए श्रीमती शाह ने कहा कि पिछले 14 सत्रों में 27,000 से अधिक मामलों पर सुनवाई हुई है, जिनमें से लगभग 70% का समाधान हो चुका है। प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना PM युवा के तीसरे चरण के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 43 युवा लेखकों का चयन किया गया। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में लेखन को प्रोत्साहित करके समावेशी साहित्यिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।